ओम शांति, ओम शांति। कल शाम को सभी ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी। बाप दादा से मिलन मनाया। बाबा ने कितनी शिक्षाएं दी। सबसे बड़ी शिक्षा कौन सी दी? मन जीते जगत जीत। तो मन को जीतने का मतलब ये तो नहीं है ना मन को मारना, लेकिन मन को अपने वश में रखना। जैसे इंद्रियों को वश में रखते हैं ना, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना है, वैसे क्या सोचना है, इसको कहेंगे मन को वश में रखना। और कैसे रखेंगे मन को वश में? बाबा के प्यार में और शक्तियों के आधार से। तो बहुत सुंदर हेडिंग भी है कल की मुरली को, बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। तो बहुत सुंदर महावाक्य सुने। मन को मारना नहीं है, मन तो मर तो सकता नहीं, मन का तो काम ही सोचना है, पर मन को मोड़ जरूर सकते हैं, मोड़ना है, मारना नहीं है। तो कैसे मोड़ेंगे? बाबा के प्यार में और शक्तियों के आधार से। तो आज की बाबा की मुरली है साइंस घमंड और साइलेंस घमंड। साइंस में क्या हुनर है और साइलेंस में क्या हुनर है? उस समय की ये मुरली है जब 1960 की दशक में अमेरिका और रशिया में आपस में होड़ लगी थी, कौन चंद्रमा तक पहले पहुंचता है। बहुत होड़ लगी थी, बहुत न्यूज आती थी। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा था, रशिया भी कोशिश कर रहा था। आखिर बताते अमेरिका पहले पहले चंद्रमा तक पहुंचा। और क्या लेकर आया? वहां से मिट्टी पत्थर ले आया, जो लाया। तो बाबा ने तो उसी समय कहा, बच्चे वहां तो कुछ भी नहीं है, ये इतना धन खर्च कर रहे हैं, इतना समय देते हैं, क्या नहीं मेहनत करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं, वहां तो मनुष्य है ही नहीं, सारा खेल तो इस सृष्टि का है, चंद्रमा में थोड़ी कोई खेल है। चंद्रमा तो सूर्य चांद सितारे क्या है, ये तो इस धरती के इस मांडवे की बतियां हैं। तो बाबा ने उसी समय का, तो देखो कितनी कोशिश की, अभी तक करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये घमंड है इनका, साइंस का घमंड। और तुम्हारा घमंड कौन सा है? तुम तो सूर्य चांद सितारे सबसे पार चले जाते हो। कितना दूर चले जाते हो? कितना माइल दूर है हमारा परम धाम, लेकिन एक पाई का खर्चा नहीं, एक पाई का भी खर्चा नहीं, और कितना सहज जाते हो। तो बाबा ने आज कंट्रास्ट बताया है। उस समय तो बहुत होड़ थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। और बताते हैं नील आर्मस्ट्रांग, ये सबसे पहला एस्ट्रोनॉट था जो स्पेस में जाकर फिर चांद तक उतरा था और वहां झंडा गाड़ा अमेरिका का। तो जब उससे पूछा गया, और उस समय स्पेस में धरती के चारों ओर चक्कर भी लगाया, तो उनसे पूछा गया कि आपने ऊपर से धरती को जब देखा तो कैसा देखा, तो कैसा देखा? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जैसे सागर में एक बूंद होती है उसी रूप से देखा। फिर उसने अमेरिका देखा, भारत देखा, ये देश देखे क्योंकि ऊपर से देखा। तो कहा हमको तो सब एक ही दिखाई दिया, कोई बॉर्डर्स नहीं, कोई पार्टीशन नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही दिखाई दिया। तो उस समय बाबा ने ये भी कहा था, देखो बेहद में जाओ तो हम सब एक है, हाँ ये तेरा ये मेरा है ना, कितने अभी दुविधाओं में फंस जाते हैं, कितनी हदों में आ जाते हैं, तो इसीलिए बेहद में चले जाओ तो कुछ भी तेरा मेरा नहीं। तो आज बाबा ने हमें साइंस के हुनर और साइलेंस के हुनर में कितना अंतर है, हम तो उससे भी पार जाते हैं। और कितनी देर लगती है एक सेकंड में परमधाम पहुंचने में, कितनी देर लगती है बस सोचो और पहुंच जाओ। अखंड ज्योति का मह तत्व में आत्मा बिंदु में शिव बाबा के सामने हो, एक सेकंड लगता है। तो आज बाबा ने सारी मुरली इसी पर ही चलाई है, सुनते बाबा के महावाक्य। और वो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको तो जब वापस आते तो कितने इनाम मिलते हैं, कितनी शाबाशी मिलती है, क्या नहीं उनकी महिमा होती है, हा? तो उनको तो बहुत धन भी मिलता है। अब तुम बच्चों को क्या मिलता है, तुम इतना दूर जाते हो क्या मिलता है, हाँ विश्व की बादशाही। परंतु कैसे जाते हो, कोई ऊपर स्थूल रूप से जाने की बात नहीं, अंदर की यात्रा है, हाँ इसको कहते इनर जर्नी, फिर अपर जर्नी, फिर ऊपर की यात्रा, एक मन बुद्धि की यात्रा बिना कौड़ी खर्चे। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर कंट्रास्ट किया है, हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 16/11/2024 है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। ये भी एक बहुत बड़ी कला है ना, रूहानी कला, कैसे उड़ के जाते हैं वतन में। बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। बहुत डर तो रहता है ना, कहीं कुछ हो जाए तो मर जाएंगे। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहां फेल न हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर भी नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि तुम शरीर को तो यहीं छोड़कर जाते हो, मन बुद्धि से जाते हैं ना, शरीर तो जाता नहीं है, तो इसीलिए वहां तो डर लगता है ना, मर जाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा, तो क्योंकि शरीर के साथ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें कोई डर भी नहीं है, क्योंकि तुम शरीर को तो यहीं छोड़कर जाते हो, यहां बैठे और मन बुद्धि से उड़ गए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वो लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर भी रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहां के रहने वाले हो? वो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत इनाम मिलते हैं उनको। ऊपर में चक्र लगाकर आते हैं तो उनको लाखों सौगातें मिलती है। शरीर का जोखिम, जो रिस्क है, तो बहुत हम इतना सहज तो नहीं है, और खत्म हुए मर गए तो हुआ था ना, एक एक्सीडेंट हुआ था, कौन मर गई थी वो, हाँ क्या नाम था उसका, कमला, हाँ हाँ तो वो मर भी गई तो वहाँ क्या क्या एकदम शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे कुछ पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं वो है साइंस घमंडी, तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, बड़ा खौफनाक है, डरावना है, डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले कोई मनुष्य नहीं गए, पहले मुझे याद है कुत्ते को भेजा था, हाँ वो भी मुझे याद है, तो कुत्ते को, परंतु वो कहते सफल हुआ था, उसके बाद फिर मनुष्य को भेजा। तो बाबा कहते हैं डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वो सब है जिस्मानी हुनर, तुमको बाप रूहानी हुनर यानी कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, ये कितना बड़ा हुनर है ना, तो कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। प्राइज तो सबको मिलती है, लेकिन कोई किसको महाराजा महारानी की प्राइज, किसको प्रजा की, किसको दास दासी की, तो सब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, लॉटरी में भी होता है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कंसोलेशन प्राइज, बहुत प्राइज मिलती है। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, ये बाप तुमको प्राइज देते हैं, वो तो गवर्नमेंट निकालती है, यहाँ भगवान हमको प्राइज देते हैं। और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहाँ तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वो कहाँ है, रावण ने छीन ली वो राजधानी हमारी, रावण ने छीन ली। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं, फिर वापस मिलेगा सब कुछ। मुक्ति धाम हमारा घर है ये कोई को पता नहीं, हाँ समझते तो ना, ऊपर जाना है तो ऊपर कहाँ जाना है, वो मुक्ति धाम मोक्ष के लिए कहते भी है, लेकिन वो बाबा कहते तुम तो एक सेकंड में चले जाते हो। मुक्ति धाम हमारा घर है ये कोई को पता नहीं, अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। बाबा कई बार कहते थे ना, तुम बच्चे तो कितना दूर से आते हो, सबसे दूर है भारत से चिली का देश, बहुत अमेरिका का भी एकदम साउथ, और वहां से भी भाई बहने आते हैं बहुत, वहां बाबा के सेंटर हैं, वहां से आते हैं। तो कितने घंटे लगे, वैसे फ्लाइट में तो इतनी देर नहीं लगती है, यहाँ फिर भी चलो एक दिन के अंदर तो पहुंच ही जाते हैं, परंतु भारत से आते हैं नीचे एकदम केरला से आते, अब की बार आए हुए कई मिले हमें, कितना दूर से ट्रेन से आते हैं, बोला तीन दिन चार रात, पता नहीं कितने दिन कितना समय लग जाता है। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा को आने में कितना समय लगता है, एक सेकेंड, लेकिन कितना दूर, आप तो फिर भी तीन दिन लगेंगे और ये सब ट्रेन से आएंगे, बाबा इतना दूर से और एक सेकेंड में आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वो कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार्स में क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये तो इस मांडवे की बतियां हैं, जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं ना, है ना, ये मांडवे की बतियां हैं, ऊपर जो फोकस लाइट्स लगती है तो ये भी तो बतियां हैं स्टेज पर ज्यादा रोशनी देने लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना, ये फिर है बेहद की दुनिया, इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं, हाँ, जब पूर्णमासी होती है चंद्रमा कितना शक्तिशाली पावरफुल लाइट देता है। कल भी कार्तिक पूर्णिमा थी, बहुत सुंदर लग रहा था चंद्रमा आकाश में। तो बाबा कहते हैं इसमें ये सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये तो देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं जो देवता बनने वाले हैं हम सब। ज्ञान, हाँ बाबा कहते हैं बाबा ज्ञान सूर्य, मम्मा ज्ञान चंद्रमा और हम सब लकी सितारे, ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापिस अपने घर ले जा नहीं सकता, कोई जा भी नहीं सकता है बिगर बाप के घर लिए जाने। तो जब तक बाप ना आए तब तक कोई भी घर वापस जा ही नहीं सकता। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो हाँ कि वो घर भी है हमारा। ये भी समझते हो हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। ऐसे तो नहीं जा सकेंगे घर, पवित्र बनना पड़ेगा। और कैसे बनेंगे, दो तरीके बाबा बताते हैं, एक है योग बल और दूसरा है सजा बल। ये दो तरीके हैं पवित्र बनने के, पावन बनने के। तो बाबा कहते हैं ये भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनने बिगर पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे, याद ही नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। अब नहीं करेंगे बाबा को याद तो क्या होगा, पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। चलो सजाएं खाकर पद ऊंचा मिले, चलो मान लो भाई ठीक है कोई बात नहीं, सजाएं खाएंगे पाप पद तो ऊंचा मिलेगा पर पद भी तो भ्रष्ट हो जाएगा ना। तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। अशरीरी बन जाओ, मैं आत्मा परम धाम निवासी और पहुंच जाओ मन बुद्धि से, तो ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं है लोगों को। स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, हम भी कहाँ जानते थे, बाबा ने समझाया तब जाना है। तो स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। आईएएस का एग्जाम देते ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो वो जो अगर नौकरी वो जो एग्जाम पास किया तो माना जाता है ये बहुत होशियार है। और गवर्नमेंट को नौकरी देने देनी पड़ती है तुरंत, उनको पहले पहले एसडीएम बनाएंगे फिर कलेक्टर बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आईएएस का एग्जाम दिया है। तो बाबा कहते हैं कोई बड़ी भी नॉलेज होती है, आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इसमें ऊंच मंजिल कुछ हो, इसमें इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। आईएएस का एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों माँ एकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सत्युग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। हमारे लिए पूरी सृष्टि खाली कर देते हैं बाबा। तो जब तुम सत्युग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम कौन सा ऐसा नाम देंगे जो दोनों को दे सकते हैं? दोनों को बाबा कहते हैं तुम शिवालय भी कह सकते हो, जहाँ शिव बाबा रहते हैं और जहाँ शिव बाबा ने स्थापन किया, दोनों को शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं और तुम बच्चे आत्माएं भी रहती हो। ये है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वो कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, चांद में प्लॉट खरीदेंगे, वहां पर जाके रहेंगे। बाबा ने एक दिन कहा था ना, चलो चांद पर प्लॉट खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे, किसको पैसा देंगे, हाँ क्या करेंगे वहाँ, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब उनके अधूरे सपने हैं। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं कि इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उनों की आश पूर्ण नहीं होती है। चलो गए भी तो क्या फायदा है? तो आश पूर्ण नहीं होती है। कोई वहां जाके जमीन खरीदेंगे या वहां जाके ले कुछ वहां रहेंगे तो वो समझते यहाँ अगर युद्ध होगा ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हम तो चांद तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी। लेकिन वो अपनी ऐसी आश बनाए रखे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो उनों की तो आश पूर्ण नहीं होती है, पर तुम्हारी आश पूर्ण जरूर होती है। कैसे तुम्हारी आश पूर्ण होती है? तुम नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। हमारा भी स्वाभिमान है ना, उनका फिर देह का अभिमान है। तो वो है झूठा घमंड। वो माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है, बहुत धन मिलता है। करके चलो 5-10 करोड़ मिलेंगे, कितना धन मिलेगा उनको, 5-10 करोड़ मिलेंगे। और तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि उन्हों को ये जो पैसे मिलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। वो धन कितना भी उससे मिले लेकिन वो तो सब खत्म हो जाना है। बाकी थोड़े दिन ही समझो, चलो उस धन का सुख लेवे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नर्कवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। रूहानी ताकत क्या होती है? बाबा कहते तुम ही जानते हो। तो रूहानी ताकत किसे कहेंगे? जो आंतरिक शक्तियां, वो रूहानी ताकत है। वो तो बाहर की शक्ति दिखाते हैं, समझते ना, मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मेरी मसल्स है, ये सब है। तो बाबा कहते हैं वो जिस्मानी ताकत दिखाते हैं। वो जिस्मानी ताकत से तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वो जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे? वो जिस्मानी ताकत है साइंस की ताकत, तो उस ताकत से कहाँ तक जाएंगे? चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। चलो पहुंचेंगे भी तो भी बाबा कहते हैं पहुंचेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसको स्पेस वॉर कहते हैं। वही लक्ष्य है कि अगर हम रॉकेट छोड़े, वो हम मिसाइल छोड़े और वो एंटी मिसाइल छोड़े, तो वो हवा में वो मिसाइल एंटी मिसाइल अटैक करके खत्म कर दे, है ना। जैसे महाभारत में, रामायण में, रामायण में तो बहुत दिखाया है कैसे राम ने ऐसे छोड़ा, फिर रावण ने छोड़ा, कैसे ऊपर खत्म कर दिया। तो देखो बाबा कहते वो अंत का युद्ध है, स्पेस वॉर। तो बाबा कहते हैं तो उम्र का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। तो वो है जिस्मानी हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम चांद सितारों तक पहुंचेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर वो सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएगा। वो है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है शांति धाम का स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब किताब करो, वो कितना ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब किताब करो, तुम कितने माइल ऊपर में जाते हो। तुम कौन? आत्मा। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूँ। तो परम धाम की माइलेज गिनती कर सकते हैं क्या? कितना ऊपर है परम धाम, कितने माइल ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उन लोग के पास तो गिनती है कितना ऊपर गए। हाँ, गिनती है, बतलाते हैं कि इतने माइल ऊपर में गए फिर लौट आते हैं। हाँ, बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, ये करेंगे। बहुत आवाज होता है ना जब वो रॉकेट ऊपर जाता है, फिर इतनी अग्नि निकलती है और आवाज करता है, कितना आवाज, तो हीट भी, लाइट भी, सब कुछ, और साउंड भी, सब इतना एकदम हिल जाता है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, ये करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होता है? एक सेकेंड में आत्मा उड़ गई परम धाम में, ध्यान में भी जाती है हमारी संदेशियां, कितनी देर लगती है, बस ऐसे झटका आया, उड़ गई आत्मा शिव बाबा के पास। तुम्हारा क्या आवाज होता होगा? तुम कहाँ जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई को पता नहीं ना? दादी गुलजार भी जब दृष्टि देती है पहले तो धीरे धीरे, जैसे ध्यान में गई तो झटका आता है, फिर वापस आई तो भी झटका आता है ना, पता चलता है ना कि भाई वापस आ गई, ध्यान से नीचे उतरे। तुम कहाँ जाते हो और वो कहाँ जाते हैं, तुम कहाँ जाते हो फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, किसको पता नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? हर 5000 वर्ष बाद वो अपने ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो लोग भी जो कर रहे हैं चांद सितारों तक जाने की कोशिश। बाबा कहते पिछले 5000 साल पहले भी इन्होंने किया था, कोई नई बात तो नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद वो अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि, मध्य, अंत, ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फखुर होना चाहिए, फखुर नशा होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं फिर भी करेंगे, हर कल्प कल्प ये ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं। ये सब बातें और कोई नहीं जानते, बाप है गुप्त। तुमको कितना राज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, उन लोगों का जाना है हद तक। फिर भी ये 5 तत्वों के अंदर तक ही जा सकते ना, परम धाम तक तो वो रॉकेट नहीं ले जाएगा, तो उन लोगों का जाना है हद का, हद तक। तुम बेहद में जाते हो, वो चंद्रमा तक जाते हैं, और वो तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, चांद की तो बहुत बड़ी बड़ी बत्ती है, और तो कुछ है नहीं, बतियां ही है सब। और सब रोशनी कहाँ से लेती है ये चांद सितारे? रोशनी तो सूरज से ही लेते हैं, उनको अपनी रोशनी थोड़ी है, चांद सितारे सब सूरज से ही रोशनी लेते हैं। तो बाबा कहते है कुछ भी नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है, उस समय उसने बताया था कि हमको धरती कैसे दिखाई देती है। तो ये सब बाबा अखबार में पढ़ते थे ना, तो उनको धरती बहुत छोटी देखने में आती है। तो उनकी जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है, तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है, आत्मा रूपी रॉकेट बहुत तीखा है और है कितनी छोटी। आत्माएं ऊपर में रहती है फिर आती है पार्ट बजाने, वो भी सुप्रीम आत्मा है, शिव बाबा की भी आत्मा है पर सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो। हाँ, भक्ति भी जरूर होनी है, इसलिए पूजा के लिए फिर शिवलिंग बनाते हैं, भक्ति भी जरूर होनी ही है। तो बाबा ने समझाया है आधा कल्प है ज्ञान दिन और आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सत्युग में तो ज्ञान होता ही नहीं, इसलिए संगम युग का हाँ कितना महत्व है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना? हाँ खुशी है ना सबको। हमारी आत्मा बहुत दूर दूर जाती है। वो हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले, चलो कितने करोड़ों भी मिले, भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वो कुछ भी साथ चलना नहीं है। वो करोड़ों उनके साथ नहीं चलेंगे, शरीर छोड़ देंगे तो गया सब कुछ, यही रह जाना, कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे की मरे, अभी मरे की मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती है। एक एक ज्ञान रत्न का कितना मूल्य है, बाबा कहते हैं इनका मूल्य गिना ही नहीं जाता जा सकता, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है, एक एक महावाक्य बाबा कहते हैं लाख लाख रुपया। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, तो कितने लाख जमा कर दिए होंगे, करोड़ों करोड़ों जमा कर दिए होंगे, ये सब हमको सतयुग में काम आएंगे। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो, गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? बस उस समय तो चलो बाबा कई बार कहते हैं वो कंठ कर लेते हैं श्लोक, फिर वो सुनाते हैं तो उनको थोड़ी उनकी आमदनी हो जाती है, उनको पैसे मिलते हैं, बाकी सत्युग में थोड़ी जाते हैं। अच्छा, गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वो गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है, वो तो उनका योग तो श्री कृष्ण के साथ है ना। श्री कृष्ण ने ये महावाक्य उचारे तो श्री कृष्ण ने महावाक्य, तो वो ही श्री कृष्ण को याद करते हैं, शिव बाबा से तो उनका योग नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है, बाप को भी सर्वव्यापी कह देते। चलो अगर परमात्मा एक है, परमात्मा कहते भी है लेकिन फिर सर्वव्यापी कह देते, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने है, बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा हमेशा वो ट्रांसलाइट चालू करवाते थे। अब ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम्हारे सामने है, इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर में, सब आत्माओं को जाना पड़ेगा। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। ये भी समझते हो जैसे जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा देते रहेंगे, हर एक जो भी जिसने कल्प पहले जो किया है वो ही करेंगे। तो इसीलिए अभी हमको तो पता नहीं कल्प पहले क्या किया था, हम तो यही समझेंगे ना अभी शूटिंग हो रही है तो हमको कितना ध्यान देना है। जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसे देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है, बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। पत्र बाबा पढ़ते थे या समाचार बच्चे लिखते थे, सुनकर खुश भी होते हैं समाचार पत्र, समाचार पढ़कर। बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठिक कर भीतर तरफ लग गया है। चलो आपने सेवा की तो बाबा को लिखो ना, बाबा ये सेवा हुई, परंतु बाबा को पत्र ही नहीं लिखते थे, तो फिर बाबा क्या समझेंगे क्या सेवा की। तो बाबा कहते नहीं लिखी बाबा को चिट्ठी, माना बुद्धि योग का ठिकर भीतर तरफ लग गया है। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं, नहीं तो विचार करो। हाँ, बाबा ने बड़ी मजेदार बात कही है, नहीं तो विचार करो, लव मैरिज जब होती है तो क्या होता है, बहुत प्यार है और लव मैरिज हुई है पर पति चला गया विदेश, तो बताओ क्या होता है। रोज एक दो को पत्र लिखेंगे, रोज उनको लिखेगा उनको लिखेगी, हाँ तो लव मैरिज में तो रोज पत्र लिखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं, वहां गया विदेश गया कोई और लड़की से प्यार हो गया मान लो, तो बेचारी उसकी पत्नी तो भारत में अब इंतजार करेगी, लेटर नहीं आया फोन नहीं आया। तो बाबा कहते फिर वो दूसरी लड़की को ले आएगा मानो। तो बाबा कहते कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को मार भी डालते हैं। वो पहली वाली पत्नी को मार भी डालेंगे हाँ, क्योंकि दूसरी से शादी करनी है। फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। अब ये तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज, एक के साथ लव मैरिज, बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो। भगवान का परिचय तुमने ऐसे ही नहीं अपने आप पाया, भगवान ने आकर के आपको परिचय दिया है अपना, तो आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब, कब आएगा, जबकि दुनिया पुरानी होगी तभी तो बाप आएगा। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे, बाप की ड्यूटी है, भगवान की ड्यूटी है। क्या है ड्यूटी उनकी, नई दुनिया स्थापन करने की ड्यूटी है, ये उनका ही काम है, वही कर सकते हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हो बाबा हम आपको भूल जाते हैं, जिससे प्यार होता है उसको भूल थोड़ी सकते हैं। फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, कितने ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। भगवान से कोई ऊंचा हो सकता है क्या, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितना कितनी झूठ ठगी लगी, ठगी चल रही है दुनिया में, कितना झूठ है, कितनी ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है, महर्षि वो थे उस समय तो उनका बहुत नाम था। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, ऐसे भी नहीं। देखो हमारे जितने रिट्रीट सेंटर्स है, कितने रिट्रीट सेंटर्स की जमीन गवर्नमेंट ने दी है, तो ऐसे नहीं कि कोई बिल्कुल अधर्मी है सरकार, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस कि ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट को रिलीजियस है। उनमें कई को उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस भी होते हैं, कोई तो रिलीजियस भी होते हैं, नहीं भी होते, उनको भगवान भगवान को मानते ही नहीं है, कोई धर्म को मानते ही नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। क्रिश्चियन में भी देखो कितनी माइट थी ना, कितनी माइट थी अंग्रेजों में, क्या माइट थी, सारे भारत को हक करके गए, पूरे भारत पर उनका राज्य था, हक करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं, मगध देश माना जहाँ सब कुछ खाते हैं, नॉन वेज पूरा खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, जहाँ मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ भी खाते हैं, पता है मगरमच्छ भी खाते हैं लोग। हम गए थे अफ्रीका में, मुंबासा शहर है, मुंबासा शहर में जैसे यहाँ फार्म्स होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म्स, ये सारे वो मुर्गियां पालते हैं, मछलियां पालते हैं, वो वहां पर है मगरमच्छ का फार्म, इतने बड़े बड़े टैंक्स बने हुए थे, छोटे टैंक, बड़े टैंक, बड़े टैंक, बड़े बना उससे बड़े, और इतने बड़े बड़े मगरमच्छ, छोटे छोटे मगरमच्छ, और लोग आके खरीदते थे, वो मगरमच्छ खरीदते थे। फिर हम कहते इनको खिलाते क्या है, तो बोला बड़े मगरमच्छों को छोटे मगरमच्छ डाल देते, वो छोटे मगरमच्छ खा जाते हैं। हाँ, बड़े मगरमच्छ तो उनका फार्म बताओ, वो भी फार्म। तो देखो तो इस पर एक वो बताते हैं ना, भी जो बिचारी बेचारा बकरा है उसको उसको मार करके वध करके या जानवरों को मारते हैं और वो खाते हैं। अब वो बिचारी क्या खाते हैं, वो बकरे क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं, तो वो तो घास फूस खाते हैं, उनका भी वध करके उनका मांस खाते हैं। तो जो घास खाकर मांस बढ़ाते हैं उनका भी एक दिन कत्ल होता है, और जो मांस खाकर मांस बढ़ाएंगे उनका क्या होगा। मांस खाने वालों को अपना मांस बनाते हैं और वो खाते हैं, मगरमच्छ भी मांस खाते हैं और वो मगरमच्छ मनुष्य खाते हैं। तो आज तो बाबा के तो उससे भी बदतर, मनुष्य का भी मीट खा लेते ना, है ना, आदमखोर बाबा ने कहा है। तो कहा मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए, सबसे जास्ती वैष्णव तो भारत था। ये वैष्णव राज्य है ना, विष्णु का राज्य माना वैष्णवों का राज्य, कहां ये महान पवित्र देवताएं, और कहां आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं, मनुष्य का मांस भी खाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। तो पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो देवताएं, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है, ये एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, लक्ष्मी नारायण है हमारे एम ऑब्जेक्ट की निशानी। ये सब तुम बच्चों को धारणा भी करनी है, कितनी बड़ी पढ़ाई है, बात कितना क्लियर कर समझाते हैं, माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, माला में ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरू डबल बीड, तो वो फिर मेरू ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है ना, मेरू डबल बीड, दो बीड ए, दो एक में। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं, क्योंकि मेरू जिस माला में है वो तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला है, तो निवृत्ति मार्ग वालों को तो ये माला फेरने का हुक्म नहीं, ये है ही देवताओं की माला, वैजयंती माला, ये देवताओं की माला है। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबरवार है, हम ही राज्य ले रहे हैं, तो तुम अभी नंबरवार, भविष्य में भी नंबरवार होंगे। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं, निर्भय होकर के समझाते हैं, बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं, आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, उनको ऐसे कहो ऐसी बात आपको बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, तो सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं है ये बात। उन्हों को ये राजयोग किसने सिखाया, ले जाओ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे, फिनों को इन्होंने राजयोग सीख करके ये बने, तो किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए, बड़े रसीले ढंग से, इंटरेस्टिंग ढंग से बैठ के ये ज्ञान सुनाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ये सब कैसे बनते हैं, तो बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं, और पवित्र भी बनना है, ज्ञान भी अच्छी रीति धारण करना कराना है, और पवित्र भी बनना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो, सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, वो दाता तो क्या नहीं देता है, दाता है ना वो कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की ये है प्राइस, लक्ष्मी नारायण तुम्हारे पढ़ाई की ये प्राइस है। ऐसी प्राइस तो और कोई दे न सके, तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हो? लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, लौकिक हाँ लव मैरिज में भी पति को तो सारा जन्म याद करते हैं। तो यहाँ बाबा कहते पिता को भी कि सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में। बाबा जानते हैं टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है, कितना समय लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो, क्योंकि लड़ाई लगेगी तो बाबा की याद और ज्यादा आएगी ना, उस समय वैराग्य भी पूरा आ जाएगा। तो फिर बाबा कहते जब तक लड़ाई पूरी हो तब तक बाबा कहते इतना समय लगता है। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे, कई तो भगंती हो गए तो क्या पावन होंगे। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है, इतनी तो बलवान है, अच्छे अच्छे को भी जीत लेती है, इतनी बलवान है माया। वो जो गिरते हैं वो फिर मुरली भी कहाँ से सुने, अब बन विकारों में गए तो फिर मुरली भी कहाँ से सुने, सेंटर में तो आते ही नहीं है तो उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है, मुरली जब पड़े तब सुजाग हो। गंदे काम में लग जाते हैं, कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे, जो गंदे काम में लग जाते हैं फिर माया भी बन जाते हैं। तो बाबा के तो उनको सेंसिबल जो कोई बच्चा हो जो उनको समझावे, क्या समझावे, तुमने माया से कैसे हार खाई है। हाँ उनको रियलाइज कराए कि तुमने माया से हार खाई है, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहाँ जा रहे हो। उनको कहो देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ एक जगह का हमने देखा तो कोई मनुष्य था, वो बिल्कुल नदी के किनारे था या सागर के किनारे था और एकदम से मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ आ गया और उस व्यक्ति को एकदम हड़प गया, उन्हें हप किया, और दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए गया और वो भी अंदर चला गया, वो दूसरे को बचाने क्या गया वो भी मगरमच्छ ने खा लिया। तो देखो बाबा कहते हैं माया भी तो ऐसे ही है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु जो समझदार है वो उनको निकाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए, कहां माया सारा हप न कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फखुर रहे बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइस देते हैं। दूसरा बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वरदान परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। हाँ, कोई शक्तियों की पूजा करते हैं और घर में जो शक्ति बैठी उसको मारते हैं। हाँ, पत्नी को मारेंगे और मंदिर में जाके शक्तियों की पूजा करते हैं तो वो भी तो स्त्री है ना। तो बाबा कहते हैं कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात्म प्यार के अधिकारी है। कौन है परमात्म प्यार के अधिकारी? जो संपूर्ण स्वच्छ है। स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। आज का व्यक्त इशारा, आज 16 तारीख है। सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज रखो। रूहानी तावीज रखो, तावीज होती है ना, वो एक गले में डाल देते तावीज। तो सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तावीज रखो। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। अगर आप दूसरों से सम्मान चाहते हो तो पहले खुद सम्मान दो। ऐसे ही सम्मान चाहिए और खुद सम्मान न दो तो कौन देगा? तो रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझ चलने से सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने सब बैठे रहेंगे।